मैंने उस पुण्य आत्मा से कहा कि आप देखिए ये सामने जो जाली है ये आज से 6 महीने पहले मैं ला था और गलती से या तो मेरी लिखने में फर्क रहा या उस दुकानदार के उसको काटने में अंतर रह गया और ये छोटी थी कम से कम 8 इंच और दोनों वो बच्चे बुला लिए, उनकी मम्मी बुला ली और वो बटबटा लिए मैंने, तो उन्होंने भी गवाही दी जी ऐसी ऐसी बात है। पहले ये छोटी थी 8-8 इंच दोनों की दोनों, अरीब देखो ये पूरी लगी हुई है और ये जाली बढ़ी, कफा बड़ा बड़ी नहीं बल्कि 6 इंच और ज्यादा आपके सामने, 6-7 इंच और एक्स्ट्रा है उस पूरी होकर के। तो वो कहने लगा देखो ये बातों को हम नहीं माने, आप तो वे बच्चों वाली बात करते हो। कहने लगे अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जब मानू मैं, बता भाई कोई बात। मैं तो ये तो नहीं कर रहा कि मैंने बढ़ा दी, मैं तो ईश्वर के गुण गा रहा हूं कि भगवान ने परमात्मा ने यह कृपा बख्श दी और मेरा वो दृढ़ निश्चय कर दिया जिसमें मैं डगमग हो रहा था। अगर जब तक डगमग रहता तो कोई कैसे कहता ऐसे मानता चला जाता। फिर मैं चुप हो गया, मैं अभी इतने बुजुर्ग आदमी है इसके साथ बहस करना भी अच्छा सा नहीं लगता, मैं चुप हो गया बैठा रहा। वो जान गया कि ये तेरी बात, तूने इसकी काट दी ना बात को, शायद ये महसूस कर गए, इसलिए उसने बात का विषय बदलते हुए कहने लगे मैं बताता हूँ आपको महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। योगी पुरुष ऐसे होते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर के आपने तो कुछ सोचना चाहिए। मैं बैठ सुनता रहा, उसकी माँ भी कह देगा तो बोल लेगा इसकी सारी बात मुझे तो अच्छी लगे नहीं, क्योंकि जब ये सामने बात को अस्वीकार कर अपने तुक्के लगाओगा तो मेरी बात समझ में आवा। फिर भी मैंने उसकी उस बुजुर्गी को देख करके सुनता रहा भी कह ले जो कहना तेरे, आज के बाद तो बात भी नहीं करूं मैं तेरे, अपने मन में न्यू आएगी मेरे। जब आप सामने बात को नहीं मान रहे हो तो आगे बता फिर के विषय चर्चा करें तेरे तक। लेकिन सद्भावना पूर्वक में बैठा रहा। वो कहने लगा मैं ऋषि दानंद जी के बारे में बताऊं कैसे होते योगी पुरुष। वो क्या करते थे, अपने आसन योग पद्म आसन लगा के और योग अभ्यास से पान अपान की गति को ऐसा सेट करके और अपने शरीर को ऊपर कमरे का छत लगा देते थे, ऐसे उठा ले जाते थे छत लगा सिर लगा के छत के वापस आ जाते थे और फिर ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन एक नौकर ना उनका खाना बनाता था, वो जाकर देखा खाने के लिए प्रार्थना करने गए तो देखा उसने झांकी में खिड़की में और उसने ऐसे महर्षि जी अभ्यास कर रहे छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे। उसने और दो चारों को बुला देखो क्या दिखाऊं, को कहता 10 व्यक्तियों ने देखा उनकी करामात को, ऐसे होते योगी लोग। फिर मुझे सूत बैठ गया, मैं बोला झूठ कति झूठ, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप ही करके दिखाओ मुझे। फिर हंसन लग गया, बोला आप तो सियाणे बहुत हो गए। मैं बोला सियाणा नहीं, अब हमें ये ज्ञान हो गया क्योंकि मेरे साथ आप घट गई और को मैं बावड़ी बूच नहीं, मैंने सोचा अनपढ़ हूँ इंजीनियर हूँ मैं और मैं आपसे ज्यादा काग था कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। 20 प्रमाण पक्के होकर जब ये स्वीकार किया कि वास्तव में परमात्मा ने मुझे ये मेरा हृदय चेंज करने खातिर मेरे को दृढ़ विश्वास कर दिया, अब चाहे ब्रह्मा भी आकर न्यू कहना न्यू न्यू तो ना मानू मैं, आप तो कहो चाहे मत कहो। उठकर चला गया, बोला अब तो अब सत्संगी है ना, बात के नहीं जाना करे, मैं बातों की बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अज्ञानी पापी आत्मा थे, हनुमान पुजारी था मैं तो, रामकृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन अब ज्ञान हुआ सामने प्रमाण हुआ इसको भी ना मानो तो भाई ना मानो, सामने गायें खड़ी है और कहते हम तो नहीं माने, गायें आकार में होती है वह दूध भी देती है और गाय के गुणगान लग रहे, सुबह के दूध देती है बहुत अच्छी होती है, उसका मक्खन बनता है दही निकलती है और गाय कैसी होती, गाय तो है नहीं वो तो निराकार, हम नहीं मानते, ना मानो आपके हम कैसे मान लेंगे। फिर तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है, अब ये सेट हो जाएगी और अब भी नहीं सेट होगी तो फिर यह भक्ति इस युग से उठ जाती है, अगर अब भी नहीं ये टाइम मिलता हमें भक्ति सेट करने का, दया परमेश्वर की है। और ये दास तो अपनी कोई आज भी अहम नहीं करता, मैं कोई अपने अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सब शास्त्रों का आपके सामने यथार्थता पेश कर दी, नहीं ये भी परमेश्वर की रजा है। और ये तो पहले विद्यमान थी सारी वस्तुएं, ये तो हमारे पहले मिल जाते थे, दास का नंबर है ना तापे लगे रहते सत भक्ति कर जाते, तो ये ईश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की। अब वो समय आएगा थोड़े से दिनों में आपको दिखा दूंगा कि सारा संसार एक हो जाएगा, द्वेषता समाप्त हो जाएगी और जिस पैसे के लूटने के लिए जिन दुखों के निवारण के लिए पैसे, तो पहले तो हम धन एकत्रित करने के लिए दुनिया के दोषी बनते हैं, किसी की मिलावट करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किधर रिश्वत लेते हैं, कि डाके मारे, चोरी करें, और फिर उधर से निकल जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, नेरी पैसे ज्यादा लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। अब जब इस परमेश्वर की शरण में आ जाऊंगे, ये पाप कर्मों को काट देगा कबीर साहिब, वो सच्चे पूर्ण परमात्मा के सही नुमाइंदे के आम कबीर कबीर पंथी बने, और तो उनसे नहीं बात बनेगी, वो तो सब अपने वे दुकान खोल बैठ गए। अब पूर्ण परमात्मा का सही नुमाइंदा जो सत ज्ञान दाता उस परम पिता की रजा से होता है, उससे उपदेश और वो सही मंत्र तीन मंत्र का जाप होगा, उस नाम के उपासना करने वाले को सारे तो दुख दूर हो जाएंगे। जो हॉस्पिटलों में लाखों रूपये लगने थे वो खत्म हो जाएंगे, और हानि होनी बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी कमाई से बरकत हो जाएगी, और फिर आपकी दूनी श्रद्धा परमात्मा बढ़ती चली जाएगी। जब रोजाना कर्मों के दंड कटकर सामने प्रमाण देगा परमेश्वर कि यहाँ तेरे पास ऊपर आज ऐसी कर्म का दंड की भयंकर मार थी कि हल्की करके परमेश्वर ने टाल दी। अगर परमात्मा ऐसे दुख निवारण नहीं करे तो फिर भगवान ने कौन याद करे? नास्तिक हो जाएंगे ये लोग, ये बता दिया भगवान, अब क्या बताए हैं, बताते हैं महापुरुष कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, नरसिंह जी का भात नहीं भर सकता, नरसिंह जी की गाड़ी पर आकर नहीं बैठ सकता, उसका उसका जो है ना ड्राइवर नहीं बन सकता। कमाल की बात है, फिर और भगवान क्या कर सकता है? द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता, तो फिर परमात्मा क्या कर सकता? अगर परमात्मा एक 10 फुट कूद जंप नहीं कर सकता, तो फिर उस परमात्मा ने कौन पूजा के चावा, फिर उसकी उसकी आस्था हट जाएगी हृदय से, नास्तिक हो जाएंगे प्राणी। अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की उंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया, अब ये बात ही अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा ये सारे काम करने वाला। और इसके दो कारण होते हैं, इसके दो कारण होते हैं, एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लग गया था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत नरेंद्र ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे पांच पति होंगे, फिर उसका संस्कार ऐसा था साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था, तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी द्रौपदी के ऊपर, कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपदी के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी, गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए, उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने, रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं, उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी, एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100-200 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, और वहां स्नान कर रही है, केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है, और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है, इन बच्चों को बंद करो भाई, अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी, राजा की लड़की थी, उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है, उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो, और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जावे, इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे, क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी। स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी ना लेगा, स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने छड़म कूद करके नहा धोई करी स्नान कर रही है, तो उधर उस महापुरुष ने अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू या तो गलत आ गया और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सोच कर मन ही मन पश्चाताप करें। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था, और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था, नाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया और वो नीवस्त्र हो गए और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गए। और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूँ। अब यहाँ समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर सौ रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहां पहुंचा देता कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूं जिससे इसके आने वाले संकट टल जावे। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, से जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, एक घंटा हो गया, फिर निकलते ही बाहर कपड़े कुपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए या क्या बात है, बात करेंगे भगवान की चर्चा करेंगे। वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए, टूटा फूटा पुराना उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं, नहीं तो अब बात बिगड़ गई, आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि ये नहा नहीं रहे, ये तो कुछ ढूंढ रहे। फिर आपने देखा जानते हैं द्रौपदी ने देखा कि तो नी वस्त्र है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आओगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं, परमात्मा ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी उसमें से एक बिलांत का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप एक फुट का पाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो सात से निकल गए। ऐसे सात आठ, अब दो देख लो, डेढ़ फुट है, एक फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले सात आठ, आठ सात फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी, तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है आठ नौ फुट के बाद में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी, आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़ गई और मेरे पिता समान है और क्या शर्म अपने माता पिता से। पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर लंबी लट्ठी और उसके एक और गट पाड़ के यानी एक फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया, जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया, उसने हाथ लगते पकड़ दिया, हे परमात्मा बड़ी दया करी आपने यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा जानते अंधे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा ओहो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझ के मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है, आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गणा दे, तेरी इज्जत रखे जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी, और कपड़ा बांध के अपना निकल गया, द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा दिया। अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन दुर्योधन की आज्ञा तय, पहले तो वह सोच रही थी कि मेरे पांचों पांडव पति बैठे हैं جب ان کی شادی اردن سے ہو چکی تھی اس کے بعد یدھشٹر نے ان کو جوئے میں ہرا دیا تھا. میرے 500 پتی وہاں بیٹھے ہیں, کیا میری بےزتی تھوڑا ہونے دیں گے؟ جب وہاں جا کر دیکھا دروپتی نے کون کون بیٹھے تھے, بھیشم پتامہ, دروناچاریہ, کرن جیسے یودھا تینوں بیٹھے اور ساتھ میں سینکڑوں 101 کورو بیٹھے, 500 پانڈو نیچی گردن کیے بیٹھے کیونکہ وہ یدھ میں اس میں جوئے میں ہار چکے تھے دروپتی کو اور سارے راجیہ کو. اب دروپتی نے جب وہ دوسرا سن اس کا پکڑ کے اللہ اور اس کو ننگی کرنے لگا کہ تو اس دن بھائی کو کیا کہہ رہی تھی کہ اندھوں کے اندھے ہوتے ہیں, تیرے سیس محل میں ٹکر لگی تھی ان کی, آج بتا, ہم تو اندھے ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیکھتا, اب تجھے نی وستر کریں گے, تجھے شرم کیا اندھوں کے سامنے؟ اس طرح ٹونٹ کش کے اس طرح ویگ کرتے ہوئے اور دوسرا سن نے جو دروپتی کا وہ پکڑ کا چیر اتارنا پرارمبھ کیا, تب دروپتی نے پہلے تو بھیشم پتامہ دروناچاریہ اور کرن سے پرارتھنا کی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں بولا, نہیں تو اسے یودھا اگر ایک میں کھڑے ہو کر کہہ دے خبردار نے کمے لڑکی کا ہاتھ لگایا ہے تو ہمت نہیں کوروں کی, دروناچاریہ بھی اگر کہہ دے یا کرن بھی کہہ دے ایک بار کھڑا ہو گیا بھیشم پتامہ کہہ دے, ان کوروں کی ہمت نہیں تھی ہاتھ لگا دے, وہ اتنے یودھا تھے ان کو معلوم تھا, لیکن اس دریودھن کا ملین ان کھا کر ان کی آتما دشٹ ہو گئی تھی. لڑکی کو ننگا کر رہے ہیں سامنے بیٹھے اتنے بزرگ آدمی, یا تو اٹھ کے چلے جاتے نہ مانتے تھے, یہ بھی تو ان کی دھارمکتا تھی اگر وہ انسان ہوتے تھے, اور وہی بیٹھے ہر پھر بول نہیں رہے. تب ویدر کھڑا ہوا, ویدر نے کیا کہا کہ نکموں کیا کر رہے ہو تم, کچھ تو سوچ لو, دنیا میں تمہاری بےزتی ہوئے گی, کہیں گے اپنی عزت اپنے ہاتھوں اتار دی, ان کورو اور پانڈو کو دو نہیں بھائی, تم ایک چاچے تاؤ کی سنتان ہو, تمہاری عزت اور ان کی عزت میں کوئی انتر نہیں ہے. کیا بتایا کہ ویدر کہے یہ بندو تھارا ایک کل ایک ہے پریوارا. اب دوسرا سن نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اپنے چاچا کے, دوسرا سن نے کہا کہ تو تین پانڈووں کا چمچا ہے, انہیں کی طرف بولتا ہمیشہ. ویدر کے مکھ پر لگا تھپیڑا, تو ہے پانڈووں کا چہرہ. دوسرا سن نے کہاں تک غلط بات کہہ دی کہ تو ہے باندی کا جایا, تو باندی سے اتپن ہوا تھا نا, اس کر کے تو ہین ہے. اور اس سمے جب یہ کہا تو ہے باندی کا جایا تو بھیشم درون اور کرن مسکایا, وہ ہنسنے لگے, تینوں وہ مہاپرش بیٹھے تھے نکمی آتما, انہیں تمکانا چاہیے تھا نکمے اپنے چاچا پات نے کیسے اٹھا لیا, خبردار ایسی غلطی کیا کرتے ہیں, لیکن اس کے ستھان پر ہنسنے لگے جب اس نے کہا نا تو باندی سے اتپن ہوا ہے, باندی کا جایا ہوا ہے, تو تینوں کون بھیشم درون اور کرن مسکایا. اب وہ ویدر تو چھوڑ کر سبھا کو چلا گیا کہ ایسی نکمی سبھا میں رہنا بھی پاپ لگتا ہے. اب کیا کہتے ہیں پرماتما نے کہ اسی کارن سے یہ دوست کے بھاگی ہو گئے, کون بھیشم پتامہ دروناچاریہ اور کرن اس کا یدھ میں درگتی ہو کر مرے. ایسے موجود آدمی اور سبھا میں ست وچن نہیں کہتے نہ کے سمے جو پنچایت میں, تو ان جیسی دشٹ آتما نہیں ہوتی, وہ گور پاپ کے باغی ہوتے. ہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو سبھا چھوڑ کر چلی جانی چاہیے, وہ بیٹھنا بھی پاپ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب دروپتی نے دیکھے تو سب بندھے پڑے ہیں اپنے اپنے, کوئی تو وچنوں میں مریادا میں بند گیا, کوئی کسی کے اس کے دن نہ کھا کر بند گیا, آنکھ بند ہوگی ان کی, تیرے پتی بھی از وچن بند ہو گئے کیونکہ انہوں جوئے میں ہار دی, تو یہ بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب جب انسان اپنے جو سنسارک سہاروں سے جب پورا ہو لیتا ہے کہ تیرے یہ نہیں کچھ کر سکتے, ان سے واپس ہٹ جاتا تو پرماتما کو چاہتا ہے, اور پرماتما بھی تبھی مدد کرتا ہے کہ تو پہلے اپنے ان سہیوگ دیکھ لے تیرا کون ہے. اور جب اس سنسارک سہاروں کو سنسارک آسرے کو تیاگ کے ایشور آسرا جب لیتا ہے پرانی, پھر وہ اپنی چھتر چھایا کرتا ہے, لیکن اس سمے کیسے کرتا ہے؟ جب تک ہم اس پرمیشور سے سیدھے نہیں جڑیں گے تب تک وہی پرماتما آ کے کیول اس کے کیے ہوئے پچھلے سنسکار وش اور سوم ہی وہ جس کا اپاسک ہے اسی کا روپ بنا کے, اور اسی اس تاکہ اس کی آستھا بنی رہے بھکتی میں, نہیں تو کال تو چاہتا ہے کہ ان کی آستھا ہٹ جا اور یہ ناستک ہو جا, کبھی بھکتی کرے کو نہیں اور انہیں پتا نہ لگے کون بھگوان ہے کون کیسا ہے, اس کی تو نیت ایسی ہے. اور یہ پرماتما بھکتی ہماری آستھا ہمارے ہردے میں بنائے رکھنے کے لیے, تاکہ کبھی نہ کبھی آستک رہیں گئے تو کبھی نہ کبھی کبھی میں یا اپنا کوئی داس بھیج کے ان کو پھر شرنوں میں لے کر بیڑا پار کر دوں گا. उससे पहले द्रौपदी का क्रम बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचन लग गया और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी, और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है, और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधर्म वही लाभ देगा आके, और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीर हरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता, किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे, श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में द्वारका में उस रुक्मणी के साथ पासे खेल रहे, महल में शतरंज खेल रहा था, और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ बारह, कोई पक्के अठारह, कोई कच्चे ग्यारह, ऐसे बोलते हैं, जो ही ऐसे पासे डाले, और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए, उसमें ये पुकार आत्मा की पुकार उस सच्चे दरबार में जाती है, सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है, और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल, और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं, तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई वहां जाते ही उसकी पुकार सुनकर, और वहां से फिर उस पुण्य वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़की ने, गंदे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है, और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है, तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का किसमें, श्री कृष्ण के अंदर, और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते, क्योंकि हम उसको भगवान ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा, वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को ही शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की भगवान नास्तिक ना हो जा, श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति ते बटन दाग दिया, अनंत कहा उसने, अनंत, और कहना था पासे डालकर कच्चे बारह या पक्के अठारह, और वो कहा अनंत, रुक्मणी हाथ पकड़कर मुस्कान लगी कि आर गया आप तो, मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़े ही है, उसमें फिर प्रेरणा कर दी अंदर से, उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया, उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बदव्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है, और अनंत इसलिए कहा है, अब कौन बोल रहा है ये, यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम दो साल के लगातार सत्संग सुनोगे तो समझ में आओगी, वो परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है, बिल्कुल सीधा वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है, और आत्मा के साथ ही वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है कि गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले परमात्मा के अंदर, वो श्री कृष्ण के अंदर वह शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर, इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बनाकर और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकु समझाई, ये अनंत किस लिए का मुझे बताओ, हाथ पकड़ कर श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप आत्म परमात्मा जो है ना पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना गंध में वायु, वायु में गंध रहती है, ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति उसे आत्मा के साथ रहती है और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई अंध कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्त हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही के ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना तो फिर कौन हमें याद करेगा। प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पिछोड़ी होई हमारा नाम न ले वह कोई। कहते वहां कर दे ही से कहते तन दे ही से पासा डारी और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब कौन है वो मुरारी? एक तो मुरारी श्री कृष्ण जी, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही आधारित मानकर चल रहे थे अभी तक, तो उसी के साथ साथ मिलती जुलती व्याख्या उस परमेश्वर की आएगी। ये पीएचडी की बातें हैं, बहुत दिन में जाकर आपका ये निर्णय होगा, बहुत दिन में दिमाग कैच करेगा, लेकिन धीरे धीरे सुनोगे तभी कैच होगा। अब वो पूर्ण परमात्मा और तो कोई करे नहीं कुछ भी सकता, तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका दान पोषण करता। ये बात आपने भी याद रखनी पड़ेगी, तब ये कहानी समझ में आओगी, ये पीएचडी आएगी लास्ट पॉइंट। अब वो पूर्ण परमात्मा जो सारे पाप विनाशक पापों का मुरारी, पापों को काटने वाला, सबका मतलब कर्म संस्कारों को बदलने वाला, अहंकार काम क्रोध मोह लोभ रूपी राक्षसों को भी मारने वाला, वो वास्तविक वो है मुरारी। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो परम पिता आके और वहां पहुंच गए पीछे से और कृष्ण रूप बनाकर ऊपर बैठ गए। वो सोचल चिद्र मैं करूं अपने जन के काज, खेचत खेचत खेच कसीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। वो परमेश्वर वो उत्तर पोषक तो अन्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रोपसुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार निपाए। क्यों बढ़ाए? द्रोपसुता को दीने लीर, लीर माने एक टुकड़ा एक कपड़ा दिया था, एक अंधे महात्मा को दान किया था और ताते अंत बढ़ा दिए चीर। इस कारण से उस परम पिता ने ही उसके अनंत चीर बढ़ा दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण जी को तो नियमत बना के वो परमात्मा हमारी आस्था गुरुओं में बनाए रखने के लिए, इसलिए कि कभी जब समय आएगा सही गुरु मिलेगा तो आपकी आस्था ऐसी ही बनी रहे और सही गुरु में फिर ऐसे आश्रित हो जाए, फिर बेड़ा पार ऐसे ही होगा। बेशक से तीन लोक के गुरुओं में भी साधना और आस्था इतनी बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, अब हमने फिर देखना पड़ेगा पंद्रहवें अध्याय का ये सत्तरवां श्लोक, इसमें इसको नहीं भूलना जब यह बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण ने नहीं, वही परमात्मा तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके काम वही करता है और दूसरे के बस के नहीं। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं प्रमाण दे रहा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस सत्य ज्ञान को समझना है। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो उन दोनों से क्षर और अक्षर से न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर परमात्मा अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। अब इसी बात का प्रमाण दादू जी कहते हैं, करे करावे साईया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के ये आप बगल हो जावे। करे करावे साईया कबीर परमेश्वर और मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। जैसे पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन जी को तो लहर उठाकर निकाल दिया, वो तो निकल गया, वहां नहीं पाया झोपड़ी में जो श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव आमंत्रित करने दोबारा गए और उनका रूप बनाकर सुदर्शन का बैठ के झोपड़ी में वही कबीर परमेश्वर और जाकर उनका काम बना दिया। वो तो सोच रहे हैं सुदर्शन जी ने हमारी यज्ञ पूर्ण कर दी, क्योंकि ये सामने नहीं अपने आप महिमा नहीं चाहते, अपनी प्यारी आत्मा की महिमा बनाते हैं ताकि आने वाले लोगों के मेरी भक्ति में श्रद्धा और बढ़ जा। तो इसलिए कहते हैं करे करावे साईया मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के इस जीव के को हो श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हो सुदर्शन ने शंख बजा दिया और आप बगल हो जा, आप दूर हो जाता, पता भी नहीं लगने देता ये कहानी कैसे कौन किस टाइम कर गई। तो इन बातों से आपने समझना, फिर क्या होता है एक नरसी नाम के भक्त थे। वो पहले बड़े कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी कर चुके थे, और फिर भी वो कंजूस हुआ बैठा, चीचड़ हुआ बैठा, चिपक रहा उस माया के। और परमात्मा ने सोची, देखिए प्यारी आत्मा, ना इसके पास कोई लड़का और 56 करोड़ की संपत्ति, आज से काफी समय पहले था अरबों खरबों की संपत्ति समझो, और नादान आत्मा जो दान नहीं करता यो गधा बनेगा, बनेगा भूत इस माया के चिपट के। उसके लिए उस परमेश्वर ने ना जाने के किस प्रकार से प्यारी आत्मा से वो माया का जाल छुटवाया। कैसे? नरसी बहुत कंजूस आदमी हो गया था और उसकी हुंडी चला करती। हुंडी क्या होती है? जैसे ड्राफ्ट बनाए जाते हैं आजकल, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि कागज पे लिख देते हैं पैसे जमा करवा के कि हमने इसके इतने पैसे जमा हो गए और किसी बैंक में दे दो, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले हुंडी हुआ करती थी, इनको हुंडी कहते थे। वो उसमें कुछ एक शहरों में एक आध व्यक्ति को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दी थी, उसकी संपत्ति का हिसाब लगा कर कि इतने रुपए तक का ड्राफ्ट बना सकता है और हुंडी दे सकता है। वो फिर आपस में 6 महीने में आदान प्रदान वर्ष में एक दूसरे के साथ वो सेठ लोग कर लिया करते थे, इनको हुंडी कहते थे। अब नरसी जी बहुत कंजूस हो गया था, उसकी हुंडी चला करती थी, पैसे 56 करोड़ उसके पास रुपये, 56 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप गंगा स्नान करवा के लाओ हमें। सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करे, यही नान उले क्या करेगी, क्या रखा है, इतनी दूर जाओगी, ये है वो। उन्हें सोचा भी 10-20 रुपए खराब होंगे, और जैसे बह का रखा किसी को भी गंगा पर जाओ वहां दान जरूर करे, तो बोली आत्मा ऐसे चल पड़ी। ज्यादा कहने से तो वो चल पड़ा भी, चल दिया, दुखी करेगी रोजाना, सिर में दर्द रखेगी, चल घूमे आते चल पड़े। गंगा में जाके स्नान करने लगे, इतने में वो कुपूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, तो बाद में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई। कोई बात नहीं, आप इसको सुनते रहना, फिर आपके समझ में आ जाओगी कौन थे वो भगवान जो सबके दुख दूर करने वाले। वो पूर्ण परमात्मा आके, पहले तो हम भी आपको समझाने के लिए शुरू शुरू में श्री कृष्ण कहा करते थे, श्री कृष्ण आगे, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि और ये शास्त्र नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए सोचा करता कि बिल्कुल भी ना सुनेंगे मेरी एक बात को। अब आपके सामने प्रमाण शास्त्र आ गया, आप सारी समझ में आओगी, आपके मैं जो सच जो जो बात बताऊंगा वो सही सच समझ में आ जाएगी। तो पूर्ण परमात्मा वो उत्तम पुरुष तो अन्य परम अक्षर पुरुष सत्पुरुष अकाल मूर्त आए, एक ब्राह्मण रूप बना के कहने लगे, सेठ जी कुछ दान करो, गंगा स्नान करने आए हो तो दान किया करते हैं, क्योंकि जैसी वो परंपरा ने बना रखी थी उसी को आधार लेकर के। सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े हैं पंडित जी, किसी और पे ले ले जा, आप जाओ। परमात्मा कहने लगे, भाई देखो वैसे नहाने का क्या फायदा, कुछ दान किया करो, ये पानी तो वही ना लेते आप। उसकी पत्नी कहने लगी, कर दे दो एक दो रुपया दान ब्राह्मण ताई। बोला, ना ले चुप करके स्नान कर ले, यहाँ ले आया ना इस ये बड़ी समझ तू, पैसे दान कर दे, कितना पैसे, कोई ना थोड़े लाया हुए। आखिर में भगवान ने कहा, आठ अन्य कर दे, बोला आठ अन्य भी कौन नहीं है, कहने लगा रहा चार अन्य तो कर दे, चार अन्य भी कौन ही। आखिर में बोला, 1% दूंगा 1%। वो बोला, अरे 1% दे दे, कुछ तो हाथ तो छोड़ दे तू। ने बोला, 1% दे दूंगा, पर दूंगा मेरे वहां आ जाइए मेरे घर पर। भगवान बोले, चल घर पर दे दिए भाई। अब नरसी नहा धोकर घर आके स्नान कर करा कर अपने घर पहुंच गए। अब नरसी जी ने जाके वह पोटड़ी रखी थी सफर वाली, पीछे तो परमात्मा ने जाके वह खटखटाया दरवाजा, नौकर आया। नौकर ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण? पर ब्राह्मण बेश में परमेश्वर बोले, भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1% यहाँ पर रखी है दान करने की, और वो कहो मेरा टका दे दे, तो घर आके देने की कही थी, मैं फिर अपना और काम जाना है दूर। अब नौकर ने जाके सेठ जी तब बैठा था, इतने में कहा, जी एक पंडित जी आ रहे हैं बाहर द्वार पर खड़े और कह रहे हैं आपने कोई गंगा पर उनका 1% दान करने का प्रॉमिस किया था, वो लेने आए से अपना। अब उसने सोचा, नरसिंह ने तो बड़ा ढीठ आदमी गिल गिला लिया, तो कहने लगा, भाई यूं कह दे अब सेठ जी आ रहे थके हैं, कल देंगे, बैठ जाए इंतजार, कल 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 देवेंगे। नौकर ना का संदेशा दे दिया। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, कल दे देंगे, विश्राम कर लेते हैं, बार बार के आ जाते, लेके जाऊंगा। उसी के बाग था एक, उसको ठीक है बाहर, उसमें बाग के नीचे परमात्मा ब्राह्मण रूप में अल्लाह के बिछा के चादर लेट गई। सुबह उठते फिर खटखटा दिया दरवाजा, दरवाजा खटखटा भी कहो सेठ जी ने मेरे और टका दे दे। नौकर गया सेठ जी, वो ब्राह्मण खड़ा द्वार पे अपना दान दक्षिणा मांगे। सेठ ने सोचा बड़ा ढीठ आदमी तो गया भी कोई नहीं। अब सेठ ने सोचा आज ही एक टके की इज्जत लगा रहा है, कल न मन माने 100 रूपये की लागत बैठ जाए, तो इसको तो रास्ता पा गया। फिर ये अब किसना भी काम कर दो इसका ना आगे फिर से दुखी करेगा। यो कहने लगा नो कह दे, नौकर से कहा सेठ नरसिंह ने यूं कह दे भी मेरे हमारे सेठ जी बीमार हो गए और ठीक हो जाऊंगे जब देंगे, सफर में आए थे बुखार बन गया। नौकर ना आकर कह दिया सेठ जी, ब्राह्मण जी हमारे सेठ जी ना सफर से आए थे, उनका बुखार हो गया और कहते हैं ठीक हो जाएंगे ना, फिर आपका टका दे देंगे। अब वो कहने लगे भगवान भाई कोई बात ना, इंतजार कर लेते हैं, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, अब बार बार तो आया नहीं जाता, पैसा लेकर जाऊंगा, वही अपना दिन में घूम फिरावे शाम न बड़े आकर फिर लेट जाए। अब एक दिन देखा, दो दिन देखे, तीन दिन हो गए, सेठ जी ने पूछा कि वो गया कि यहीं पर है। वो कहने लगे जी वो तो यही बिस्तर लगाए बैठे हैं सामने अपने अपने के बाग में, और कह रहे थे अभी लेके जाऊंगा, बार बार तो आया नहीं जाता। सेठ नरसिंह इतना इतने निकम्मेपन पा गया, कहने लगा नो कह दो वो तो मर गया सेठ थे बस। अब नौकर ने जाकर कह दिया ब्राह्मण हमारे हमारे सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया, और भाई बड़ी दुख दर्द बात हो गया, तो बीमार हो गया बेचारे, गंगा स्नान करके आए थे। भगवान बोले भाई कोई बात ना, ये तो मरना जीना तो लग रहा है, चलिए मृत्यु तो होगी पर तो अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, यूं तक जहाज जा। तो नौकर ने आके कहा सेठ जी वो तो ये कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कहा भी अंतिम संस्कार करा के जाएंगे, बात तो बहुत बुरी बनी है, चलो एक तरह से तो क्या जाया जाता है। सेठ जी बोला तो ढीठ आदमी है भाई, ऐसे करो तुम लकड़ियां ढोने शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए वस्तु मर गया तो उन्हें लकड़ी क्यों, इब सेठ गांव का मर जा, शहर का दुनिया इकट्ठी हो जा, सब न बेरा हो, वो चार आदमी लकड़ी ढोए उसके नौकर, और लकड़ी डोली जब ने बोला गया कि यहीं पर हक जी, वो तो एक लकड़ी उठा रहा है साथ में और शमशान घाट की तरफ जाने लग रहा है। तो कहने लगा भाई मेरी तुमने करो एक अर्थी तैयार करो, जनाजा बना रहे नकली। अब सेठ जी को लौटा दिया, उन चारों उठा दिया नौकरों ने और चिता के ऊपर रख दिया। चिता के ऊपर जब रख दिया तो परमात्मा डाल के लकड़ी ने जो ले रहे थे कंधे पे, और कहने लगे निकम्मे सेठ जी तो भी वह पक्का उस्ताद निकला। अब देख एक टके पे जान देने को जा रहा है, भाई हमने माफ कर दिया तेरा दान हम लेते थे। सेठ बोला पक्की बात है, कहा पक्की बात है, अगजात है, अकात आप जा रहे हैं भाई। भगवान चल पड़े और सेठ ने वो सारी लकड़ी वापस ठुवाई, चलो सारी ठाक ले चलो उठाओ, और बची खुची जो थी ना छोटी मोटी बट जाकर उन नाप धोती गए उसमें कपड़े में डाल के और सारिया की नो गठड़ी बांध दिया हुआ वो भी वापस पहुंचा दी। अब अगले दिन उन्होंने सोचा चलो वो तो गया ब्राह्मण था, नेक्स्ट डे अगले दिन आकाश तो दूर तक घूम फिर आऊंगा, तो दो तीन दिन जंगल पानी भी घर में जाना पड़ा, बोर दूर तक घूमने निकल गया सैर सपट्टा करने के लिए। उधर से परमात्मा आगे नरसिंह रूप बनाकर वो एक पूर्ण ब्रह्म, और नौकरों से बोले भाई एक काम करियो, कोई निकम्मी आत्मा है ना, कल कई दिन का तंग कर ब्राह्मण मुझे, आज वो मेरा रूप बनाकर ना आ जा, कभी उसको अंदर मत पड़ने देना, वो हो सके मेरा भी रूप बनाकर आ जा, और तो इसकी चाल चली नहीं, पर आ जा तो उसने कह दिया चला जा, ना मानना उसका दो ठोक दियो। अब सेठ जी का रूप बनाकर परमात्मा अंदर प्रवेश कर गए। अब सेठ जी आया दो आध घंटे पीछे खूब सैर सपट्टे करके, अब जो द्वार पर खड़ा था नौकर कहने लगा भाई वहीं खड़ा हो जाना सेठ, दे रुपये तो बहु रुपया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर लिया तूने, अब देखा ना वो सच्ची कह रहे थे हमारे सेठ जी के मेरा रूप बनाकर आएगा, तू वो एक काम कर दिया। और वो सेठ क्यों रुके, नौकर गया कहने तो बिल्कुल सामने आ गया, तो वो नौकर कहते रहे तुझे सुना नहीं, लट छाया, तो वो कहता अरे फलाने फलाना मल दकड़ा मल क्या कर रहा है तू, मैं तेरा मैं वो हूँ सेठ हूँ नरसिंह, तू क्या बात कर रहा है मेरे तय, ने बोला हमारे भगवान हमारे सेठ तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो आज मेरा रूप बनाकर आ जा मनमाना कभी तो उसका दो ठोक दियो और हमारे सेठ तो अंदर है भाई तू चला जा ये आदेश गलत हो रहे हैं ना तो हम तेरा देंगे मार तो पिट जाएगा चला जा यहाँ से। तो वो कहता है कैसे बात कर रहे हैं मेरी तुम निकम्मे मैं तुम्हारा सेठ हूँ फलाना हूँ और तुमने नौकरी तो निकाल दूंगा नू ला गया करण उसका ठागा लठर वो लगा ना हमारे ने भाग लिया सेठ से फिर भाई सचमुच कोई बात गड़बड़ में है जब इतनी समर्था इतनी शक्ति से पेश आ रहे हैं तो जरूर उस बेरूपिये ने पहले आकर काबू कर लिया बहुरूपिया ने और ये तो मेरी सारी संपत्ति हड़प करेगा। अब सेठ कहाँ पहुंचा थाने में पहुंचा थाने में तो फिर रिपोर्ट की वो पहुंचा कहाँ कोर्ट में कोर्ट ने उसी दिन एकदम एक्शन ले लिया वो उसकी बही जब्त कर ली जब बही निकाल लाए वे कहीं बहियों में कोई फेर बदलना कर दे को पढ़ पढ़ा ना ले डुप्लीकेट नकली नरसीयत है। अगले दिन पेशी लगी दोनों खड़े कर दिए कोर्ट में भगवान भी और नरसी भी और दोनों की शक्ल मिले। अब पहले कोर्ट ने उस असली की गवाही मांगी कि तू इस बही में बता दे क्या क्या लिखा है। उसने बता दिया कि मैंने एक लड़की का ब्याह किया था उसमें इतने भातियां आए थे इतने फलाने आए थे इतना दान किया था वो सारा रिकॉर्ड करा करते पहले ब्याह का और एक मकान बना था उसमें इतनी कड़ी आई थी इतना सतीर आए थे इतने जंगले जाखी थी वो लिख रहा था। वो दो चार बात बताकर चुप हो गया जी और तो मुझे ज्ञान नहीं मिला भाई ठीक सा था फिर नकली भगवान नकली नरसी बुला जो भगवान था वो कहने लगा भाई बता इसमें कोई बही में ऐसा लेख बता जिसे प्रमाणित कर सके तू असली है। तो भगवान बोला खोल इसने कीते थे कौन सा पृष्ठ खोल ले उसने पृष्ठ खोल लिया लागे परमात्मा पढ़ने उल्टी सुल्टी सारी सुना दी। अब वो नकली था असली सिद्ध करना पड़ा कोर्ट ने और असली को नकली सिद्ध करके कह दिया भाग जा तू यहां से निकम्मे सेठ तंग कर दिया तने। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाकर अब ने कहे भगवान यो मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था इसने सारी ये संपत्ति अरब कर ली मेरी बताया के बनी मेरी गल्या। उधर से वो परमात्मा फिर आ जाते हैं वो नरसी नकली बन के वो ब्राह्मण रूप बना के वहां खड़े हो गए आके कहने लगे नरसी अब बता बेटा यह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला कि बेईमान थी तो मेरी पर मेरी पार नहीं बसाती। भगवान बोला कि यह तेरी पहले भी ना थी ना दंत्र भूल लग रही थी यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है तू तो सुख का बन जा रहा था तेरा ब्याह खर्ची भी ना गई दो पैसे दान भी ना दिए गए गदा बनेगा निकम्मे तो सर्प की जो नीम जागा इस माया ने जोड़ जोड़ के और एक शर्त पर तुझे दे सकता हूं अगर यदि तो इसने सारी न बांट दे धर्म भंडारे में लगा दे तो नहीं दुनिया का खून चूस चूस कर ये ब्याज बट्टा ले लेकर अरे जहर इकट्ठा कर लिया तेरे कीड़े पड़ कबर तो देख रहे ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी और कुत्ता बनेगा तेरे खाज लगेगी दुनिया का यू तो नरक डाल कर दिया इकट्ठा तेरे पास रहना नहीं निकम्मे ना तेरे संतान लड़की थी उसकी शादी कर दी बता तू करेगा क्या इसका। तब उसका सारी बात समझ में आएगी परमात्मा जैसे आप कहोगे गुरु जी ऐसे कर लूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने और कहा बेटा भंडारा कर दे इसका नीता संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी तेरे मरिया जागा ना जिया जागा। उसी दिन से भंडारे ला दिए और सब कती पाई पाई खर्च करके झोपड़ी गाल के बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेकर। अब आया लड़की का ब्याह दोती का ब्याह हो गया लड़की की शादी लड़का कोई था नहीं इसका। अब उस समय बात कौन जाओ गरीब आदमी के साथ 16 अंधे आ करते आसपास के वो समझा करते नरसी मत नारी है भगवान ने जब इतना खेल कराया ना तेरे साथ तो दूर नहीं तेरे थे। कहने का भाव ये है कि कैसे किसी की गाड़ी मांगी किसी के बैल मांग कर उसको लचर पचर करती हुआ गाड़ी चल पड़ी और भाती उसमें कौन वो 16 अंधे और साथ में नरसी। अब वो गाड़ी ना चले कुआ उसकी कील निकल जा कि तब वो बैल बैठ जा कोई खड़ा हो जाए ना उन्हें ना चलाना आवे ड्राइंग भी ना करनी आवे। इतने में परमात्मा ने एक बार याद किया था उस नरसी ने ए परमपिता हम तो नीच आत्मा थे और ए मालिक आज यह आपत्ति आ गई मुझे तो बैलगाड़ी भी ना चलानी आती और ये पहुंचे भी ना मनमाने वहां तक और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास सोनी देने को नहीं पर पहुंचेंगे जरूर आपके आपके कृपा से पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की प्रसन्न तो हो जाएगी, इसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं, पर देख कर राजी हो जाएगी, पिता को प्रसन्न होगी। और हे भगवान, ये तो बड़ी आपत्ति आई, इतना याद ही किया था, इतने में वो परमेश्वर एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, और एक थैले में डाल के वो आरी उरी बसोले बसोले और पहुंच गया। हाथ देकर कहने लगा, रोकिए भाई गाड़ी वाले, रोकिए। अब नरसी गाड़ी हांक रहा था, नरसी बोला, भैया तो रुकिए, रुकाई है, चलते नहीं है, वेल कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। और गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला इसकी, बैल गाड़ी या कच्ची लकड़ी की। तो कहने लगा, भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कुछ दूर तक मेरा रास्ते में गांव पड़ा है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। भगवान बोले, ओ नरसी बोला, भाई गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो रही नहीं, ये तो बिल्कुल कंडम हो ही पड़ी है। भगवान बोले, भाई मैं मिस्त्री हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ला मैं ठीक कर दूंगा इसको। अब भाई कर लेता है, अब मार के दो चार थोड़े पर थोड़े इधर उधरते हैं, अपनी शक्ति तो वक्त ही सही कर दी, बैठ गया। कहने लगा, भगत जी आप बैठ कर वजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक मिस्त्री रूप बनाकर उसका बनकर ड्राइवर गाड़ी का अर्जा छोड़ी वहां पे। 7 किलोमीटर दूर, 7 मील, 7 कोस दूर स्थान से, और रात रात में पहुंचा दी। थोड़े से 2-4 घंटे में जा छोड़ी। कहने लगा, भाई ले भगत जी मेरा तो आ गया स्थान, आप अपनी गाड़ी संभालो, और यहां से 7 कोस रहेगा तुम्हारा स्थान, जा तुमने जाना है बस 7 कोस, और आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो जो भगवान चला रहे थे गाड़ी, ऐसे चल रही थी जैसे हवाई जहाज हो, और खूब भक्ति में मन लग रहा, सब सूरदास तो अंधे थे 16, और नरसिंह जी भी भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा बैठे पास में पूर्ण ब्रह्म। अब जब भगवान उतर के चले गए तो वह गाड़ी फिर झटकम पटकम लतरम पतरम, फिर ऐसे बैल कभी खड़ा हो जाए, कभी चल रहा है, कभी झटके पटके लगे। तो अंधे वो कहने लगे, अंधे जो बैठे थे कहने लगे, नरसी रे गाड़ी कहाँ ले गया तू, रस्ते से नीचे उतार दी क्या, ये तो बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसी की आंख खुली क्यों, नरसी बैठा था, कहने लगा, ना गाड़ी तो ठीक चल रही है रस्ते पर, अगवाई कितनी दूर आ गया पा, कि वो जो ड्राइवर था ना वो चला गया, वो कह रहा था अभी 7 मील 7 कोस रहेगी यहाँ तो तुम्हारा वो स्थान। वन देखने लगे, पागल 7 कोस रहा कर, अभी तो आज सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा, कल शाम तक सुबह तक पहुंचेंगे अगले रात ने, तो क्या 7 किलोमीटर रह गया, और पूछ किसी तरह। इतने में एक व्यक्ति आ गया, वो उससे पूछा, भाई ये हमारा जो हमने जाना है वो जूनागढ़ कितनी दूर है। वो तो कहने लगे, भाई यहाँ से 7 कोस रहता वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो नरसी कहने लगा, नंदों से भाई ये तो 7 कोस बताओ यहाँ से। तो वो एक अंधा स्याणा बहुत था, शिक्षण नाम था उसका, वो शिक्षण नाम कहने ने कहा, और नरसी वो आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चलावा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी, वो तो जी उतर कर चला गया, अरे देखता किधर गया वो। अब इतनी देर में ज्यादा 3-4-5 मिनट हुई होंगे, उन्हें देखा था कितना वो आदमी दिखा ना, सारे खेत खाली पड़े थे, कोई आसपास आड़ भी नहीं, वे ना दिखाई दे। नरसी बोल, वो शिक्षण बोला, निकम्मे तो भगवान था, अरे हम तो अंधे थे, तेरे तो आंख थी, इतने चरण क्यों ना पकड़ दिया परमेश्वर के, आपने देखा या गाड़ी पहले आल भी नहीं लगे थी हमारे, कोई थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा था, करीब देख इस गाड़ी की हालत उसी जमीन पर चल रहे, अरे तो भगवान थे भाई, ये तो हाथ नहीं आए, नरसी तो ने गलती कर दी। नरसी का के बताऊं भगत जी, उन क्या है पाछा, तो मुझे भी भक्ति में गणा जोर से आनंद आया, और मेरी तो ऐसी आनंद आ रहा था, बोलने दिल नहीं कर रहा था, पर वो भाई मेरे तो पकड़ा कर बैल चले गए। अब फिर पहुंच गए वहां पर, बात पर हमने कुछ को नहीं, पाटड़े पर पहुंच गए, और माई ने उसने उसकी समदन ने जो ना उसके ऊपर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा भाती, क्या देगा भात में तेरे को। समदन कहने लगी उस नरसी की जो लड़की की सास आरता लिए खड़ी थी थाल का, कहने लगी के देगा यो कंगाल, डड़े दिए इसने, 2 डड़े देगा, हमारी बेइज्जती करने आ गया, 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी निकम्मे ने, आज हमारी बेइज्जती कराना आ गया, यो डड़े डालेगा थाली में, के डालेगा। جب اتنا ہی کہا تھا اس نے سمندر نے تو نرسی کی آنکھوں میں پانی آ گیا، پرماتما جو رکھے گا تو ہی رہیں گے، کوئی ہمیں عزت کرے تو ہی بےزتی کرو. تو پرماتما بھی کہتے ہیں مم سنت آدر انادر کرو کیوں نہ کوئی، اور مم سنت سرن جگت جان چھوئی. میری شرن میں آ گئے تھے تمہاری کوئی عزت کرے چاہے بےزتی کرے تم چنتا نہ کریو، اور میری شرن میں جو آ گیا تو باقی جگت تو سمجھو راکھ ہے. یہ بکواد کرا کرتے ہیں، پر آنے دو میرا سمے. کہتے ہیں کلپے کارن کون ہے کر سیوا نکام، اور من اچھا پھل دوں گا جو پڑے میرے تے کام. اب یہاں اس پرمیشور کا کام آ گیا تھا. اتنے میں آکاش سے کہتے ایک سونے اور چاندی کے دو ڈڑے آئے اور سمدن کی تھالی میں پڑ گئے، وہ اب یا واسی ہوگی. اور اتنے میں کہتے اوپر سے ورش نوٹوں کی بارش ہونے لگی، نوٹوں چاندی کے سکے تھے پہلے سے ورشا ہونے لگی. اور اتنے میں وہ پرماتما ایک گاڑی لے کر بھری ہوئی گاڑی، ان کی لڑکیوں کے دیتے ہیں نا دہیج پہیج، وہ اگلیاں کی اور پچھلیاں کی، وہ کم سے کم 150 تیل لا کے در دیے تھان کے تھان، اور وہاں گاڑی چھوڑ دی کہ لے اتار لے بےکھاری نا، تو اپنے ہمارے بھگت کے بارے میں ایسے نہیں کہہ دے گی. اور اتنا کہہ کے سمیت گاڑی اور ویل چھوڑ کے وہ انتر دھیان ہو گئے، پرم پتا دکھائی دیے. بولو ستگور دیو کی جے. اب نرسی پجاری شری کرشن کا تھا، وہ نے سوچا شری کرشن کر رہے ہیں، کہتے کرے کراو ایسا یہ من میں لہر اٹھا، اور دادو شردر جیو کا وہ آپ بگن ہو جا. یہ بڑائی نہیں کی کروا دیتا شری کرشن راما جی کی، اور کرتا سمے. پھر کیا ہوتا کہ ایک دن نرسی جب بیٹھا تھا اپنی کٹیا میں جھوپڑی میں، چار سادھو سنت دوارکا جانے کے لیے بھگوان کے اس دوارکا کو دیکھنے کی اچھا کر کے آگے، اور پہلے نرسی کے وہ ڈرافٹ چلا کرتے تھے، ہنڈی چلا کرتی تھی. اب وہ پہلے بھی ایک دو بار ہنڈی بنوا کر گئے تھے. اب گاؤں میں جا کر نگر میں پتا کیا بھی نرسی جی کہاں ہیں، وہ گاؤں والے نے بتایا کہ وہ تو بھائی باہر بیٹھے ہیں. کیا کام ہے؟ کہ ایک انڈی بنوانی تھی. گاؤں والوں نے مزاق کر دیا، کہنے لگا بھائی وہ نرسی یہ بکواد کرتا ہے، اب وہ جلدی سی ہنڈی نہیں بناتا، اس کو وہ کہے گا میں کنگال ہو گیا ہوں، مزاق کرتا آج کل وہ، اور زیادہ زور دو گے نا جو بنا ہوگا نا تو بناتا نہیں. کہاں ہے کہ وہ باہر جھوپڑی میں بیٹھا ہے، وہاں چلا گیا. چاروں کے چاروں وہ بھگت آتما جو تیرتھ یاترا پر آئی ہوئی تھی، انہیں سوچیے 500 روپے ہمارے پاس ہے، رستے میں کوئی چھین نہ لے ہوئے، ہنڈی بنوا لے چلتے ہیں دوارکا میں کسی سیٹ سے لے لیں گے. اب نرسی کے پاس گئے، نرسی سے وہ 500 روپے رکھ دیے اور کہا سیٹ جی ہماری ہنڈی بنا دے. نرسی کہنے لگا مہاتما جی میں اب سیٹ نہیں رہا، میری ہنڈی چلتی نہیں، وہ کینسل ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اب تو چاروں مہاتما کہنے لگے بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، گاؤں والے تو بکواد کرنے لگ گئے، تنہیں شرم نہیں آتی مہاتماؤں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، تجھے پاپ لگے گا، ہم پیسے دے رہے ہیں کوئی مفت تھوڑے بنا رہے تیرے سے. اب نرسی نے سوچا بھی یہ ماننا نہیں، اور سنت سے نہ جانے کی آتما دکھی ہوگی، بتائے کیا کروں، گاؤں والے نے دن کے ساتھ ان کو بہکا دیا، مزاق کر دیا. اسی سمے ساکشی رکھ کے اپنے پرمیشور کو، کیونکہ وہ شری کرشن کے پجاری تھے، ساول سہا ساولا سیٹ ساول یعنی سانوریا، بھگوان شری کرشن کے نام ساول سہا لکھ کے کہ بھگوان شری کرشن کے نام میں اپنے ایک ہنڈی لکھتا ہوں، یہ داس کی ہنڈی سویکار ہو، ان کو بھگتان کیا جاوے، آپ کی امانت میرے پاس ہے. 500 روپے لے لیے اور وہ کاغذ بنا کے دے دیا، اب لے جاؤ سیٹھ مہاتما جی. وہ چل پڑے، پیچھے سے سیٹھ نے کیا کیا، ان 500 روپے کا ایک بھنڈارے کا سامان، گھی چاول کھیر دودھ دودھ بنا کے اور بھنڈارا کر دیا، 500 کے 500 کی روٹی کھلا دی. اب 500 روپے بہت ہوتے تھے، 50,000 کے قریب ہو جائے آج کل کے، پورا بھنڈارا کر دیا. اب وہ چاروں مہاتما پہنچ گئے کہاں، دوارکا میں. وہاں جا کے پوچھا بھائی کوئی ساول نام کا سیٹھ ہے؟ وہ سیٹھ جس کی ہنڈی چلا کرتی اس کے پاس گئے، وہ ایک سیٹھ ہنڈی اس کی چلتی ہے، اس سے پوچھ لو. اس نے دیکھا، کہنے لگے یہ تو نرسی کی بنائی ہنڈی ہے کیا، یہ نہیں چلتی اس کی، اب یہ تو کنگال ہو گیا، دنیا کو ٹھگنے لگ گیا، اب جھوٹھی ہنڈی بنا کے یہ تو دوالا نکل گیا اس کا. تو ساری دوارکا میں پوچھ لیا، ساول نام کا کوئی سیٹھ ہو کوئی نہیں پایا، اور سب مزاق کرنے کے نرسی تو ٹھگن لگ گیا دنیا کو، اب اس کی ہنڈی نہیں چلتی، اس کا ڈرافٹ نہیں چلتا. اب چاروں مہاتما جا کے ایکانت میں بیٹھ کے نگر تبار بھائی کے بنے بتا، वो तो नमना कर रहा था बेचारा, हमने सिरमा दर्द कर दिया उसके, गले पीछे पड़ गए किसी के कहने सुनता है। उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको संतों को पैसे दिए के नहीं दिए, देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है? लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो दो चार रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा? वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था? पहले रोटी बनाने के लिए बनाते थे गोल गोल सी लोई और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थी। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया, उसमें चार रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है चार रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने चार रोटी बना, यह तो आंट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। चारों रोटियां का आटा, आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं मुझे भूख लगी है। ओए होए वो परमेश्वर स्वयं आके, और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है, चार रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए। और जाके कहा कि आ जाओ भाई कैसे बैठे हो महात्मा? अके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे, ऐसे ऐसे नरसी ने नरसी की उंडिया चलती नहीं, हमारी उनने उंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने जादती कर दी उसका। अरे या कोई सेठ नहीं सावण नाम का? तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सावण? मैं सेठ हूँ सावल, आ जा मेरी दुकान पर चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपए। रहे या उंडी बिल्कुल सही चला इसकी तो भाई, कौन मना करे था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट उस बाजार में द्वारका के में जो चारों तरफ बनिया की दुकान थी, कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके एक चांदी के खुड़के दूर थे दो तीन चार, सुना सुना का उन सब ने अकोर सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है ये के क्या होने लग रहा है। 500 रुपए जो नए नए कते जैसे आज बनकर आए हूँ 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावण सेठ हूँ, और कह देना उस नरसी को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरु देव। तो ऐसे परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा आकर ये सब काम करता। ठीक है चाहे हम श्री कृष्ण पर सेहरा बांधे चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरु देव की जय। नरसी जी की हुंडी झाली सावल सा कहाया, द्योति का जब ब्याह हुआ वहाँ भात भरण को आया। जो कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा नरसी जी की हुंडी को उन्होंने पूरा किया, दिया झाली यानी उसका ड्राफ्ट कैश किया, और द्योति का जब ब्याह हुआ था तो भात भरण ने वो परमेश्वर ही किया। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की प्यारी आत्मा गरीब दास जी उनके साक्षात दर्शन होने के बाद कहते हैं कि नरसी जी की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, और द्योति का जब ब्याह हुआ था वहां भात भरण को आया। ये गीता जी प्रमाण करती है। फिर देखिए ये गीता जी का अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 17 कि वो पूर्ण परमात्मा जो वास्तव परमेश्वर कोई और है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी वही कुछ करता है और कुछ कोई नहीं कर सकता। वही आत्मा का आधार है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का, वो अंतर्यामी परमात्मा एक अंश परमेश्वर का हमारे साथ रहता है, वही परमेश्वर की शक्ति। नीचे देखिए 17 का श्लोक नंबर 15 का ये 16 और 17 15 का और नीचे देखो 17। उत्तम पुरुष वास्तव परमेश्वर तो कोई इन दोनों से भी नारा ब्रह्म और परब्रह्म से भी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला करता है अविनाशी परमेश्वर आत्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, सत्पुरुष है, कबीर साहब है, अन्य परमात्मा है जो सबके सब काम करता है। तो क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतार पर। सत साहिब।